सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमें भारत की अंतरिक्ष यात्रा की उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य की नई संभावनाओं पर विचार करने का भी अवसर देता है। आज भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से बदल रहा है और सरकारी संस्थानों के साथ साथ निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स भी इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारत के स्पेस इकोसिस्टम की निरंतर यात्रा पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पल्लव बागला जी, जो लंबे समय से विज्ञान संचार के क्षेत्र में सक्रिय हैं। पल्लव जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
नमस्कार जी।
पल्लव जी, अंतरिक्ष कभी केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा और राष्ट्रीय गौरव का विषय हुआ करता था, आज ये किसी देश की अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्षमता, वैश्विक प्रभाव, इन सब चीजों को भी तय करने लगा है। इस पूरे बदलते परिदृश्य में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो सफर तय किया है, उसे आप किस तरह से देखते हैं, खासकर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के संदर्भ में?
देखिए, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाया जाता है क्योंकि 3 साल पहले भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहली बारी विक्रम लैंडर को लैंड किया था और प्रज्ञान रोवर को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास चलाया था। उसी को एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भारत पहला देश बना था जिसने ऐसा काम किया दक्षिणी ध्रुव पे, तो उसी उपलब्धता को मनाने के लिए अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। आज 3रा अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है और अगर आप देखें, इस वक्त कोई ऐसा पहलू नहीं है हमारी जिंदगी का जिसमें कि हमें अंतरिक्ष कहीं ना कहीं से छूता नहीं हो। आप एटीएम से पैसे निकाल ले जाएं तब आप अंतरिक्ष क्षेत्र से, सैटेलाइट से टच में आते हैं। आप मौसम की जानकारी दें तब कहीं ना कहीं अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ते हैं आप। आप मछुआरे हैं, भारत के फार्मर्स हैं, किसान हैं, हर कोई किसी ना किसी तरह से अंतरिक्ष से कहीं ना कहीं जुड़ता है। आप मैप लेके गाड़ी से जाएं या रास्ता देखें, गूगल मैप देखें, वो भी अंतरिक्ष में जुड़ता है। तो हमारी जिंदगी में अंतरिक्ष पूरी तरह से हर जगह पे है और भारत की जो अपनी क्षमता है अंतरिक्ष के क्षेत्र में वो एंड टू एंड है। हम अपने रॉकेट बनाते हैं, हम अपने सैटेलाइट बनाते हैं और उसके ऊपर जो हमारा एप्लीकेशन का काम है वो दुनिया में अद्वितीय है। सबसे अच्छे एप्लीकेशन भारत के ही बनाते हैं और आजकल जो बदल रहा है माहौल उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बड़ा हो गया है। हाल में हमने देखा स्काईरूट एरोस्पेस के 28 साल के एवरेज एज वाले बच्चों ने अंतरिक्ष में पहले ही अटेम्प्ट में अपना विक्रम 1 रॉकेट भेजा। तो स्टार्टअप का क्षेत्र है वो भी आगे बढ़ रहा है, सरकार की तरफ से भी बहुत इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हाल में ही प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप्स के सीईओ से मुलाकात की, उनको प्रोत्साहन दिया। तो इतना कुछ हो रहा है कि हम और आप इस पे 2 घंटे भी बिताने तब पूरा नहीं होगा।
आपने अभी काफी विस्तार से बताया कि क्या हो रहा है और देश ने अब तक क्या क्या हासिल कर लिया है इस क्षेत्र में और ये यात्रा किस दिशा में जा रही है। आप इनमें से किन उपलब्धियों और किन प्राथमिकताओं को रेखांकित करना चाहेंगे भविष्य के मद्देनजर?
देखिए, भविष्य के मद्देनजर भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसका नाम है गगनयान। वो ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि भारत अपनी ही धरती से, अपने ही रॉकेट पे एक भारतीय को अंतरिक्ष में श्रीहरिकोटा से भेजना चाहता है और वापस लाना चाहता है। ये गगनयान प्रोग्राम जो है एक लंबा प्रोग्राम है, कई सालों से इसरो पे काम करता रहा है और आज ही इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने जो नेशनल स्पेस डे पे अहमदाबाद में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अगले 4 महीने के अंदर पहला गगनयान का अनक्रूड मिशन का मतलब हुआ मानव रहित। पहले 3 मिशन होने हैं मानव रहित, उसमें से जो पहला मिशन है वो उसको अंजाम देंगे। तो गगनयान का बहुत बड़ा महत्व है। भारत ऐसा 4था देश बनेगा जिसके पास अपनी ताकत से अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यात्री को भेजने की क्षमता बनेगी और 2000 35 तक भारत की मंशा है कि वो एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाए और 2040 तक अपनी क्षमता से एक भारतीय को चांद की सतह पे भेजे और उसको वापस लेके आए। तो भविष्य तो बहुत क्लियर है, लेकिन इसके साथ साथ ये तो हुई ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात, फिर हमारे पास अपने सैटेलाइट होंगे जो कम्युनिकेशन के लिए हैं, हमारे सैटेलाइट हैं जो सर्वेलेंस के लिए हैं, उस सब में भी भारत बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है और इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बहुत बढ़ रही है।
ने प्राइवेट सेक्टर का उल्लेख किया है, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स की जो बढ़ती भागीदारी है, इसे हम कितना बड़ा बदलाव मान सकते हैं? हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र में लॉन्च और सैटेलाइट तकनीक से आगे बढ़कर कई नई क्षमताएं भी विकसित की हैं।
जी देखिए, भारत का जो अंतरिक्ष का प्रोग्राम है ज्यादातर अभी तक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के माध्यम से होता रहा था। इसरो के पास भी, इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने बताया है कि 80% से ज्यादा पैसा प्राइवेट इंडस्ट्री के पास जाता था जो अपनी तरफ से अलग अलग पार्ट्स बना के इसरो को देते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बड़ा रहा है, 400 से अधिक इंडस्ट्रीज हैं जो इसरो के साथ जुड़ी रही हैं, लेकिन अब वो समय आ गया है जब प्राइवेट सेक्टर अपने ही सैटेलाइट बना के अंतरिक्ष में भेज रहा है, अपने ही रॉकेट बना के अंतरिक्ष में भेज रहा है। हमने देखा, अभी स्काई रूट की बात करते हैं, पहले देखते हैं अंतरिक्ष में सैटेलाइट के क्षेत्र में, पिक्सेल कंपनी है बैंगलोर की, वो अपने सैटेलाइट बना के भेज चुकी है, एक दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट उनके अंतरिक्ष में हैं। उसी तरह से रॉकेट के क्षेत्र में हमने देखा, हाल में स्काई रूट एरोस्पेस, उन्होंने अपना विक्रम 1 रॉकेट पहले ही अटेम्प्ट में सफल प्रक्षेपित किया श्रीहरिकोटा से और उससे उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। आने वाले टाइम में अग्निकुल कॉस्मोस करके एक चेन्नई की कंपनी है, वो भी रॉकेट भेजने की तैयारी में है और इसी तरह से सैटेलाइट और भी कंपनियां बना रही हैं। पीछे गैलेक्साई ने अपना सैटेलाइट बना के छोड़ा था, गैलेक्साई स्पेस एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका सैटेलाइट काम नहीं किया। अंतरिक्ष में हर चीज पहली बारी में काम नहीं करती है और फेलियर हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है, और पीछे इसरो के भी फेलियर हुए हैं जो कि वो अभी सुधार के लॉन्च के साइट पे वापस आने की तैयारी में है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफलता आती है लेकिन बहुत मेहनत के बाद आती है।
अगर हम इस पर देखें कि हमारी सरकार क्या कर रही है, तो सरकार और निजी क्षेत्र के बीच जो एक बढ़ता हुआ भरोसा दिख रहा है अभी, वो कितना महत्वपूर्ण है और क्या जो हम एक नीतिगत निरंतरता देख रहे हैं, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लोग जोखिम ले सकें, इसके लिए एक माहौल जो तैयार हो रहा है, क्या वो हमारे स्पेस इकोसिस्टम को एक नई गति दे सकता है?
देखिए, प्राइवेट स्टार्टअप जो है वो अपना पैसा जुगाड़ के अपनी रिस्क पे चीजें करने को तैयार हैं और उनकी कैपेसिटी यूज न्यू टेक्नोलॉजी और उस नई तकनीक से नई चीजें बनाने में उनकी क्षमता काफी है, लेकिन अभी सारे स्टार्टअप जो हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, तो उनमें अभी वो ताकत नहीं है जो कि आप देखें अगर अमेरिका में बोइंग है या लॉकहीड मार्टिन है या इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अभी हमारी कंपनियां छोटी हैं और वो छोटे सैटेलाइट पे कर रही हैं, और लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो सब आगे बढ़ के रॉकेट के क्षेत्र में कभी न कभी वो अमेरिका की बड़ी कंपनी जो है स्पेसएक्स को स्काई रूट एरोस्पेस जरूर टक्कर दे सकेगा। तो देखिए, आने वाले टाइम में बहुत आयाम हैं जो कि खुलेंगे, और अभी सारे प्राइवेट सेक्टर के जो स्टार्टअप हैं वो एंकर कस्टमर सरकार को ही ढूंढ रहे हैं। वो चाहते ये हैं कि बनाए हम, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन और उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है वो सरकार दे। तो ये थोड़े दिन चलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में इनको अपनी ताकत से बहुत चीजें करनी पड़ेंगी। जहां तक पॉलिसी का सवाल है, हाँ, जब से स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म किए गए और प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी गई और उनको इजाजत दी गई कि वो इसरो की फैसिलिटीज में अपने टेस्ट कर सकें, इसरो की फैसिलिटी से लॉन्च कर सकें, जैसे स्काई रूट एरोस्पेस ने किया श्रीहरिकोटा में हमारे अपने सरकारी लॉन्च पैड को यूज करके, तो वो एक अच्छी बात है। आने वाले टाइम में हम बहुत देखेंगे कि इस तरह से दोनों की शायद साझेदारी हो, तो इस तरह से मिलजुल के जो भारत का अपना एक इकोसिस्टम है स्पेस का, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो रहा है। इसरो अपनी जगह कायम रहेगा, एक्सप्लोरेशन का काम, आरएनडी का काम इसरो करेगा, और जो रिपीट सैटेलाइट्स और रिपीट रॉकेट हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाएंगे।
पल्लव जी, आज भारतीय कंपनियां लॉन्च सेवाओं से आगे बढ़कर अंतरिक्ष के कचरे को हटाने, डॉकिंग और इन स्पेस रिफ्यूलिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर भी काम कर रही है। इन क्षेत्रों में भारत के लिए भविष्य में क्या संभावनाएं हैं?
देखिए, अभी जो कदम लिए गए हैं, आपने जो तीनों क्षेत्र बोले, वो बहुत ही छोटे कदम हैं, लेकिन हर शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। अंतरिक्ष से कचरा हटाने का काम जो है वो इस बार स्काईरूट एरोस्पेस के रॉकेट में उसके लिए पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो एक्सपेरिमेंट अनफॉर्चुनेटली सक्सीड नहीं किया। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ एप्लीकेशन के क्षेत्र में कई स्टार्टअप हैं जो कि खासकर फार्मर इंश्योरेंस के क्षेत्र में, फार्मिंग इंश्योरेंस के क्षेत्र में बड़े कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे बहुत काम हो रहा है और वो ज्यादा कहानी उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। और बहुत सारे बैंक्स जो हैं आज अंतरिक्ष के क्षेत्र को यूज करके फार्मर को लोन देने में, फार्मर की रिस्क असेसमेंट में अंतरिक्ष के क्षेत्र को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये जो अभी कचड़े वाली बात है या और इस तरह के एक्सपेरिमेंट हैं, वो तो अभी बहुत छोटे स्केल पे है।
अंत में नेशनल स्पेस डे 2026 से आगे देखते हुए भारत को अपनी अंतरिक्ष क्षमता को अगले स्तर तक ले जाने के लिए किन क्षेत्रों पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए?
देखिए, सबसे बड़ा क्षेत्र जो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर की तरफ से डिमांड है कि भारत को अपना एक अंतरिक्ष का लॉ बनाने की जरूरत है। अभी हमारे पास अपनी कंट्री में स्पेस लॉ नहीं है, हम गवर्नेंस के क्षेत्र में थोड़ी अभी हमारी कमी है। तो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, लायबिलिटी क्या होगी जब प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, एक तरफ तो वो चाहिए हमको। उसकी दूसरी तरफ आती है जो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में हमारा गगनयान का प्रोग्राम जो है, जिसमें एक लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को ह्यूमन रेटिंग करके उससे अंतरिक्ष में एक क्रू मॉड्यूल से भेजा जाएगा, वो काम आगे बढ़ रहा है। पिछले साल में हमने देखा था कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष गए थे, लेकिन वो गए थे फाल्कन 9 अमेरिकन रॉकेट से और स्पेसएक्स की क्रू ड्रैगन से, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे। तो अब गगनयान में भारत अपने रॉकेट से ही भेजना चाहता है, अपनी ही धरती से अपनी ताकत पे भेजना चाहता है। उसके साथ साथ जो हमारा अपना कार्यक्रम है कि एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो 2035 तक, उसका काम भी आगे बढ़ रहा है। और आने वाले टाइम पे अगर हमने एक मनुष्य को चांद पे भेजना है और वापस आना है, उसके लिए एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV की तैयारी चल रही है, जो कि जो हमारा बाहुबली रॉकेट है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। तो कई क्षेत्र में काम चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। उन्होंने तो अंतरिक्ष में इसमें एक नया ही पूरी ऊर्जा फेंकी है, जिससे कि बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर भी एनर्जाइज्ड है, इसरो भी एनर्जाइज्ड है, और भारत को इससे बहुत फायदा भी हो रहा है। तो मुझे तो दिखता है कि आने वाले टाइम में भारत एक स्पेस पावर के रूप में जरूर उभर के आएगा। और जैसे इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने आज अहमदाबाद में कहा कि हमारी शुरुआत हुई थी रॉकेट के पुर्जों को साइकिल पे ले जाते हुए, और आने वाले टाइम में 2040 तक हम वी विल बी सेकेंड टू नन, माने कोई सबके बराबर आ जाएंगे।
पल्लव जी, आपने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों, बदलते इकोसिस्टम और भविष्य की संभावनाओं पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। सुर्खियों में अपना बहुमूल्य समय देने और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में